उस बंगले के अंदर एक हाइट सीसीटीवी फुटेज है। ये बात ना तो उन दोनों नेता को पता थी और ना ही आस्तिक को पता थी। और यही जब इन्वेस्टिगेशन में उस फार्म हाउस को खंगाला गया तो आस्तिक का चेहरा इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ गया था। अपने सामने चल रही उस फुटेज को देखकर आस्तिक के पसीने छूट गए थे। उसने अपना गला साफ किया और रजत को देखते हुए कहा, ये नकली है, ये फुटेज फेक है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। रजत मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता था राजा साहब कि आप यही कहेंगे कि ये फुटेज नकली है, लेकिन सबूत तो नकली नहीं है ना। वो लड़की जो उस रात उस कमरे में मौजूद थी उसे हमने ढूंढ लिया है और अब वो सरकारी गवाह बन गई है। आपने उसे मारने की धमकी दी थी लेकिन हमने उसे ऐसी सुरक्षा दी है कि आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। आस्तिक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। रजत गिरफ्तारी के सारे सबूत लेकर आया था। आस्तिक सोफे पर तनकर बैठ जाता है और अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखते हुए अपने दोनों हाथ बांधता है और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए रजत से कहता है, कीमत बताओ अपनी। रजत हंसने लगता है। उसे लगा ही था कि आस्तिक ये जरूर कहेगा। उसने भी आस्तिक को देखकर कहा, हर ऑफिसर भ्रष्ट नहीं होता है राजा साहब, कुछ ईमानदार भी होते हैं। सिंगल पुलिस हेडक्वार्टर। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया की भीड़ काबू में ही नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि सिंगल के आम लोग जो आस्तिक के पक्ष और विपक्ष में दोनों थे वो बाहर खड़े होकर हंगामा मचा रहे थे। आस्तिक की गिरफ्तारी इस समय हेडलाइन बनी हुई थी और इस समय माहौल कंट्रोल से बाहर जा रहा था। कुछ लोग आस्तिक को गलत ठहरा रहे थे तो कुछ लोग आस्तिक के पुतले जला रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो आस्तिक भगवान के समान ही था। आस्तिक ने चाहे कुछ भी किया हो लेकिन वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा ही काम करता आया है। इसीलिए जो लोग आस्तिक के काम से प्रभावित हो रहे थे वो सब आस्तिक के सपोर्ट में खड़े थे। मीडिया के लिए ये वक्त सिर्फ मसाला लगाकर न्यूज़ प्रस्तुत करने का था। उनके लिए ये बिल्कुल मायने नहीं रख रहा था कि आस्तिक की छवि कैसी जा रही है। वो हर बात को मिर्च मसाला लगाकर टेलीकास्ट कर रहे थे और सब लोग आस्तिक की एक झलक पाने के लिए बेताब हो रहे थे। कमिश्नर ऑफिस में आस्तिक और कमिश्नर साहब के साथ रजत और उसकी टीम के लोग भी मौजूद थे। आस्तिक ने रजत और कमिश्नर को घूरते हुए कहा, मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहूंगा, बस कुछ घंटे और उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, देखेंगे। रजत ने भी आस्तिक को चैलेंजिंग लुक देते हुए कहा, न्यूज चैनल, ब्रेकिंग न्यूज, सिंगल के राजा साहब और मशहूर बिजनेसमैन आस्तिक रायचंद एमएलए पवार और राजेंद्र कुमार की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार हुए। पुलिस को राजा साहब आस्तिक रायचंद के हिरासत में ले लिया है। उनके नाम के पुतले चलाए जा रहे हैं और पूरे शहर में उनकी बहुत बदनामी हो रही है। क्या सच में राजा साहब अपराधी हैं या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है? राजा साहब का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए नंबर पर हमें मैसेज करके बताइए। अलवर, राजस्थान। एक छोटे से मकान की दूसरी मंजिल पर एक साधारण से कमरे में अरुणिमा बैठी हुई थी और वो टीवी पर इस न्यूज़ को प्रकाशित होता हुआ देख रही थी। उसका एक हाथ उसके पेट पर था और दूसरा हाथ वो रिमोट पर दबा रही थी, जहां पर हर एक चैनल पर सिर्फ आस्तिक की न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही थी। अरुणिमा ने रिमोट टेबल पर रखा और सामने कटोरी में से इमली उठाई और उसे चटकारे लेकर टीवी देख रही थी। अरुणिमा के पीछे इस समय शारदा देवी और मिश्री खड़े थे। शारदा जी वैसे तो आस्तिक को इस तरीके से देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर गंभीर भाव रखते हुए अरुणिमा को देखकर कहा, अरु, तू ठीक तो है ना? अरुणिमा ने अपना चेहरा घुमाया और अपनी माँ को देखकर एक चमक के साथ कहा, माँ, कैरी की चटनी बनाना। पता नहीं क्यों मेरा इस समय खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। मैंने सुना तो था कि प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का मन करता है, लेकिन इतना खट्टा, ऐसे में तो मेरे दोनों बच्चे नींबू जैसे पैदा होंगे। शारदा जी अरुणिमा के सामने आती हैं, झूठी चिंता दिखाते हुए कहती हैं, अरु, तू इतनी आराम से कैसे बात कर सकती है? टीवी पर न्यूज़ नहीं देख रही है क्या? राजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे शहर में उनकी बदनामी हो रही है। अरुणिमा ने अपने कंधे उचकाए और दोबारा से अपनी इमली को जीभ से लगाया और अपनी एक आँख को खट्टा लगने की वजह से बंद कर दिया। अरुणिमा ने अपने मुँह से इमली के चटकारे लिए और अपनी माँ को देख कर कहा, माँ, अब आस्तिक गिरफ्तार हो गया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उसकी गिरफ्तारी में मेरी क्या भूमिका है? वैसे भी माँ, अब उस इंसान के बारे में सोचने की ना तो आपको कोई ज़रूरत है और ना ही मुझे कोई ज़रूरत है। आप भूल रही हैं मेरा उसके साथ तलाक हो चुका है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हूँ और वो शख्स अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है इसे जानने में मुझे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं उस अंधेरी रात के सपने को दोबारा नहीं याद करना चाहती हूँ, जिसे याद करके मुझे सिर्फ दर्द और तकलीफ ही मिलती है। आप, मिश्री, मैं और मेरे होने वाले बच्चे, बस यही हमारा परिवार है। इसके अलावा जो मेरी ज़िंदगी में था और जो चला गया, उसके बारे में सोचकर मैं अपने आने वाले कल को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। शारदा जी ने चिंता भरे स्वर में कहा, तुम्हें यकीन है अरुणिमा कि तुम सब कुछ संभाल लोगी और इन सब से निकल भी पाओगी? मतलब भले ही तुम्हारा और राजा साहब का तलाक हो गया है, लेकिन तुम्हारे पेट में अभी भी उसका बच्चा है। अरुणिमा एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अगर उसे अपने बच्चों की परवाह होती तो मुझे इस तरीके से सड़क पर नहीं छोड़ देता। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मिश्री जाकर दरवाजा खोलती है और मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी सक्षम भैया आए हैं। सक्षम अंदर आता है और उसके हाथ में इस समय कुछ दवाइयों के पैकेट थे। वो दवाइयों के पैकेट टेबल पर रखते हुए कहता है, रानी साहिबा आपकी दवाइयाँ। अरुणिमा धीरे से कुर्सी से खड़ी होती है और कहती है, सक्षम इन सब की क्या जरूरत थी, मैंने मना किया था ना। और हाँ, अब से तुम मुझे रानी साहिबा नहीं कहोगे बल्कि अरुणिमा ही कहोगे। अब मैं रानी नहीं हूँ।